भक्तिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपा सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे जागृति कार्यक्रम में। डिटरमाइनिंग वंस सेल्फ वर्थ, इसका भाग पहला हमने पिछली बार लिया था। सेल्फ वर्थ का अर्थ है आत्म मूल्य, स्वयं के आत्म मूल्य को पहचानना। अब यहां ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसे हमें बहुत सावधानी से समझना है, क्योंकि कई बार ये आत्म मूल्य या सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं, उसे समझने जाएं या उसे बढ़ाने जाएं तो हो सकता है कि हमारा अहंकार बढ़ जाए। तो इसलिए हमने पिछली बार इस पर चर्चा की थी कि भगवान ने हमें निर्माण कर हमें किसी योग्य बनाया है, अर्थात हमारे अंदर हमारे लिए और हमारे वजह से कुछ बहुत ठोस भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने हमारी सृष्टि की है, तो भगवान की सृष्टि में जो कुछ है वो सब का मूल्य है, क्योंकि भगवान से संबंधित चाहे वो कोई नास्तिक जो भगवान के अस्तित्व को नकार रहा है उसका भी मूल्य है। शास्त्रों में उनका भी निरूपण किया गया है कि उनके कौन से अलग अलग कैटेगरीज हैं नास्तिकों के। भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत में कहे हैं, जड़वाद, निर्वाणवाद, शून्यवाद, मायावाद, नास्तिकवाद, अलग अलग वाद हैं ये। तो इन सब का वर्णन इसलिए कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे कोई अनुकूल रूप से या प्रतिकूल रूप से भगवान के संपर्क में आता है तो उसका किसी न किसी प्रकार से मूल्य बढ़ जाता है, वैल्यू। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है न्यूसेंस वैल्यू, सुना होगा आपने कि जो हम जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को जिस स्थिति को यदि हम बिल्कुल भी अपने जीवन में उसको कोई मान्यता न दें फिर भी उसके अंदर एक प्रकार की शक्ति है, हमारे जीवन में कुछ वैल्यू जिसको न्यूसेंस वैल्यू अगर कह दें, न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की शक्ति है उसके अंदर। रास्ते चलता एक कुत्ता, क्या मान्यता है हमारे जीवन में उस कुत्ते की, गली का कोई कुत्ता, परंतु उसके अंदर भी बहुत शक्ति है न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की। और ऐसे बहुत से उदाहरण, तो इसलिए इसे हमें ठीक से समझना है। तो हम शुरू करेंगे, हमने पिछली बार कि यदि ये जो मूल्य हैं इन मूल्यों या आत्म मूल्य जिसे हम कह रहे हैं सेल्फ वर्थ, इसे यदि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या यदि हमारे अंदर है तो फिर हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं। और कई बार तो फिलॉसफी स्ट्रांगली कोई समझ लेता है या फैनेटिकली समझ लेता है तो उसे लगता है कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो केवल भौतिक पदार्थों से बना हुआ हूं, मेरे अंदर तो अनर्थ है, आध्यात्मिक रूप से मैं किसी काम का नहीं, तो फिर मेरा अस्तित्व है क्या? नकारात्मक जीवन नहीं, वो नहीं। यहां पर हमने पिछली बार समझा कि जब हमारे आत्म मूल्य को समझने के लिए या कोई गलत रूप से जब उसको समझ लेता है या उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस का अर्थ है उतार चढ़ाव, जब उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं तब हम परेशान होते हैं। इसलिए इस संसार में जब भी बैलेंस टूटता है, संतुलन, हमारे मन का संतुलन, हमारे शरीर का संतुलन, जैसे आयुर्वेद के अनुसार जो त्रिदोष हैं उसका संतुलन अस्त व्यस्त होता है, व्यक्ति बीमार पड़ता है। मानसिक संतुलन, वैसे ही ये जो आत्ममूल्य पहचानने का संतुलन, इसमें बहुत उतार चढ़ाव जब आते हैं तो परेशानी, हम अपने आप को त्रस्त पाते हैं। तो पिछली दफा हमने अलग अलग प्रकार के जो सेल्फ वर्थ हैं वो लिए थे, सप्रेस्ड सेल्फ वर्थ, मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ। तो जो सप्रेस्ड है कि दबाया गया, कृत्रिम रूप से दबाया गया, डिप्रेशन का वो शिकार बनता है. मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ, जिसने अपने आत्ममूल्यों को बढ़ा चढ़ा लिया है, तो फॉल्स प्राइड. फिर दूसरा पैर हमने लिया, फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ वर्थ, सेल्फिश सेल्फ वर्थ. फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ वर्थ गिव्स राइज टू एंगर, सेल्फिश सेल्फ वर्थ गिव्स राइज टू नैरो माइंडेडनेस. उसके पश्चात मिस्टेकन फॉरगॉटन, मिस्टेकन गिव्स राइज टू कंफ्यूजन, फॉरगॉटन गिव्स राइज टू बीइंग अनप्रोडक्टिव. तो अब हम एक एक उदाहरण लेंगे. यहां पर हमारे श्रीमद् भागवत से सबसे पहला उदाहरण है किंग जरासंध ऑफ मगध. अब देखो, जरासंध 17 बार भगवान के द्वारा हराया गया, 17 times. परंतु इसने अपने स्वयं का जो वर्थ है वो बरकरार रखा. तो एक ही कैरेक्टर श्रीमद् भागवत का, चाहे वो कोई देवता हो, भक्त हो, या दानव हो, राक्षस हो, बहुत से लेसन्स उसमें से हम सीख सकते हैं. तो जरासंध की एग्जाम्पल से हम ये सीख रहे हैं सेल्फ वर्थ के कनेक्शन में, कि वो अपने अंदर के वर्थ को कितना बनाए रखा था. कई बार हम देखते हैं भक्तों के जीवन में कि एक दिन माला ठीक नहीं होती है, या एक दिन इंद्रियों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो हम लोग हार मान बैठते हैं. हाँ, कई बार एक दिन के एक्सपीरियंस से हम निष्कर्ष पर आ जाते हैं मुझसे नहीं होने वाला. कई बार मैंने देखा है जन्माष्टमी या निर्जला एकादशी, कई डिवोटीज शुरुआत में बहुत उत्साह से शुरू करते हैं, फिर जब धीरे धीरे हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है, नहीं हो पा रहा है. और यदि कोई बिल्कुल ऐसी हालत में है कि अब बस गिर जाएगा, मूर्छित होकर तोड़ देता है, तो इतना गिल्टी फील करता है. हाँ, अगर कोई सिंसियर है तो गिल्टी फील करता है वो. कई बार उसको लगता है कि मेरे मनुष्य जीवन का फायदा क्या, मैं निर्जला नहीं कर सका. और फिर उसे लगता है कि फिर मैं कोई एकादशी नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं किसी भी प्रकार का उपवास नहीं कर पाऊंगा. फिर धीरे धीरे लगता है कि जब मैं उपवास ही नहीं कर पाता तो भगवत धाम क्या जाऊंगा, और जब भगवत धाम जाने के आसार नहीं है तो माला क्यों उठाऊं मैं. कई बार मन इस प्रकार के गेम खेलता है आप लोगों के साथ, बहुत अलग अलग प्रकार के गेम खेलता है ये मन हमारे साथ. तो जरासंध को देखो, 17 बार बहुत बुरी तरह भगवान के द्वारा हराया गया है, और हर एक बार उतनी ही सेना लेकर इकट्ठी कर ये लाता था. तो न केवल जरासंध खुद मोटिवेटेड था, सेल्फ मोटिवेटेड था वो, बल्कि इतने और लोगों को भी मोटिवेट कर लाता था. वो बहुत बड़ी बात है. अब भाई, अगर बाकी तो ये तो वर्ल्ड न्यूज थी उस समय की. जरासंध का भगवान के हाथों हारना वर्ल्ड न्यूज थी. तो बाकी लोग के अंदर देखो कितना कॉन्फिडेंस जरासंध के अंदर, कि वो लोग फिर से पिछली सेना पूरी बुरी तरह हराई गई, फिर भी ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कई बार इंडिया इतनी बार हार जाती है फिर भी लोग कॉन्फिडेंस के साथ स्टेडियम में बैठे रहते हैं कि इस बार तो इंडिया जीतेगी। तो न केवल जरासंध खुद के वर्थ को इतना वो वैल्यू कर उसको ट्रेजर कर रखा हुआ था, बल्कि बाकियों को इकट्ठा कर लाता था, और बाकी भी उसको बहुत प्रोत्साहित करते थे, हाँ नहीं इस बार जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ, हराएंगे, कौन है वो कृष्ण, ग्वाला है केवल, हाँ वापस मोटिवेटेड। तो जरासंध का जो है सेल्फ वर्थ, वो है मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ। तो अब हमें हमारे मन को देखना है कि जो हमारा मन है ये किस प्रकार से जरासंध का रूप ले लेता है। हम लोग कई बार जरासंध की लीला पढ़ते हैं, हम लोग जरासंध के ऊपर तरस खाते हैं, क्या कितना बड़ा मूर्ख जरासंध, 17 बार हारने के बाद भी उसने सबक नहीं सीखा, और फिर हमारा मन यदि हम देखें तो हमारा जो मन है वो अक्सर जरासंध की भूमिका निभाता है, बखूबी निभाता है, कि इंद्रिय भोग इतना सब कुछ सुन लिया, इंद्रिय भोग से परेशान त्रस्त, फिर भी हम आशा नहीं छोड़ते, हाँ आशा बंधी रहती है, हाँ फिलॉसफी मालूम है, फिलॉसफी न केवल हम जानते हैं बल्कि किसी को दूसरे को पूरा बता भी सकते हैं, उसके सारे इंद्रिय भोग के क्वेश्चंस का आंसर है हमारे पास, सब कुछ होने के बाद, सब जानने समझने के समझाने के बाद, अकेले में हमारे एकांत में हमारा मन के साथ जब हम बैठते हैं, मैं और मेरा मन, है ना, अक्सर ये बातें करते हैं, है कि नहीं। मैं कृष्ण भक्त नहीं होता तो कैसा होता, मैं मन से ये कहता, मन मुझे ये कहता, है कि नहीं। तो अपनी तन्हाई में अपने मन के साथ, मन हमें जरासंध की तरह और जरासंध के चेले चपाटों की तरह, मन जो कहता रहता नहीं, इंद्रिय भोग इतना बुरा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का हरिनाम 16 माला, हाँ यहां जरासन का 17वां हो गया था हमारा 16 माला। 16 माले में होता क्या है कि हरिनाम हमको परास्त कर रहा है, परंतु फिर भी हम भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट सरेंडर। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक बार एक लोडेड क्वेश्चन अपने सन्यासियों को पूछा था, ये सब सन्यासी डिसाइपल्स, ऐसे नहीं कि कहे के कल के आए हुए सन्यासी डिसाइपल्स, टेल मी ऑनेस्टली, डू यू रियली बिलीव दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अब प्रभुपाद के सामने झूठ कैसे बोले, इनके अंदर इतनी ईमानदारी थी, तो वो लोग 100% नहीं बोल पा रहे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है समझने के लिए कि जो होप्स हैं इस भौतिक संसार में हमारे, वो अभी तक पूर्ण रूप से जड़ से उखड़े नहीं है। हाँ क्या हुआ है कि हमने जड़ के ऊपर से उस पौधे को काट दिया, जड़ है ऊपर से पौधा काट दिया, और होता क्या है कि यदि जड़ है थोड़ा सा पानी उसको मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, तुरंत धीरे 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 उसमें से आप देखोगे कि पौधा पनपने लगता है। तो इस संसार में यहाँ वहाँ, क्योंकि 24 घंटे तो मंदिर में नहीं बैठे रह सकते, अभी बैठना अच्छा लगेगा आपको शायद, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग हो, तो दूसरी दफा चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी आप लोग आनंद लीजिए, मुझे आप लोगों से ईर्ष्या हो रही है इस वक्त कि मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ जरासंध का, कि मैं भगवान को परास्त करूंगा। तो हम लोग हमारे अंदर से ये कहेंगे कि भाई मैं कोई इतना बड़ा राक्षस नहीं हूं, मैं मतलब आप कैसे कह सकते हैं? तो हाँ, हमारा जो मन है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम चाहते हैं उसको अपने नियंत्रण में लाना, परंतु अपने हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो मन भगवान को परास्त करना चाहता है, वो जरासंध बन चुका है, अनियंत्रित मन। हम उसको डिसोन करना चाह रहे हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसी को शुद्ध करना है कि नहीं? जैसे कि किसी माँ बाप का बच्चा है, वो बच्चा यदि बदतमीज होते जा रहा है अनियंत्रित होते जा रहा है, तो माँ बाप उसको डिसोन नहीं कर सकते, है ना? सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो कितना भी बदतमीज हो उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे ही हमारा मन है, बदतमीज, कोई तमीज नहीं है, कोई इसको एटिकेट नहीं है, कब क्या विचार देने चाहिए, हाँ कब क्या सोचना चाहिए, कोई इसको बिल्कुल कोई संस्कार नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। परंतु जैसे कि एक बदतमीज पुत्र के माँ बाप उसको सहन करते हैं, हम लोग सहन कर रहे हैं। ये स्ट्रगलिंग स्टेज साधना भक्ति की, जरासंध की तरह है वो, हटी। अच्छा, एक दूसरा कैटेगरी ये है पौंड्रक। तो ये जो पौंड्रक के विषय में आपने सुना होगा कि ये एक बहुत ही अजीब कैटेगरी का व्यक्ति, दशम स्कंद में इसके विषय में बताया है, पौंड्रक के विषय में, कि पौंड्रक जरासंध कन्विंस्ड था कि मैं भगवान कृष्ण को हराऊंगा, और पौंड्रक ये एक ऐसा कैटेगरी, ये कन्विंस्ड था कि मैं ही कृष्ण हूं। जैसे आजकल कितने लोग कन्विंस्ड हैं भगवान बने फिर रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे कन्विंस्ड हैं, और फोटो भी ऐसे निकालते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा खुद की निकाल रहे हैं, खुद जगन्नाथ बने हुए हैं, रथ यात्रा उनकी निकल रही है, फिर वो अलग ही कौम है वो। तो ये पौंड्रक, इसने, इसके विषय में बताया गया है कि ये अपने पिछले जन्म में इसने बहुत तपस्या की थी, और भगवान शिवजी से इसने वरदान मांगा था कि मुझे भगवान कृष्ण की तरह आप मेरा रूप बनाना दिखने में। तो शिवजी ने कहा कि नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो पॉसिबल ही नहीं। जैसे मैं राधा मदन गोपाल जी बनाने के लिए जब मैं जयपुर गया था, तो वो लोग फोटो मांगते ना, कैसे आपको चाहिए, तो मैंने राधा श्याम सुंदर का फोटो दिया था, सभी लोग राधा श्याम सुंदर का फोटो देते हैं। तो उसने कहा देखिए, हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे, ये भगवान है, और ये जो राधा श्याम सुंदर को आप जो इतना सुंदर देख रहे हो, ये 20 साल की सेवा के बाद इतने सुंदर बने हैं, तो सुंदरता वो जो सेवा उनकी इतनी हुई है उससे उनकी सुंदरता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो हमारे हाथ में नहीं है। तो शिव जी ने भी पौंड्रक से कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत सिमिलर, कम से कम पौंड्रक भगवान से आकृष्ट था, लेकिन बहुत ही विकृत तरीके से कि वो बनना चाहता था, मैं ही बनूं भगवान। और वो इतना कन्विंस्ड था कि जितने चिन्ह भगवान के, सुदर्शन इत्यादि, शारंग जो धनुष है भगवान का, ये सब कुछ उसने डुप्लीकेट ले रखा, सब उल्लासनगर का माल बना के रख रखा था उसने। डुप्लीकेट सुदर्शन चक्र, डुप्लीकेट। अब यहां पे देखो आप, ये पौंड्रक है, हाँ, पेट देखो इसका बाहर निकला हुआ, जैसे कोई नौटंकी में भगवान कृष्ण बना रहता है। जो सही भक्त भगवान कृष्ण को जानते हैं वो लोग हंसते हैं। तो ये न केवल कन्विंस्ड था कि मैं ही वासुदेव हूं, पूरा कन्विंस्ड था मैं ही हूं वासुदेव, बल्कि उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे चेलों को इकट्ठा कर रखा था कि वो भी उसको बार बार यही दिलासा दे, हाँ आप ही वासुदेव। वो नकली है कौन, जो वो द्वारका में है, पहले मथुरा में, वो नकली है, आप असली हो, हाँ। तो उसको इस प्रकार से उसको कॉन्फिडेंस मिलता रहता मिलता रहता। तो एग्जैक्टली कलयुग के अंदर ये जो तथाकथित भगवान बने फिर रहे हैं, और इनके चेले भी उनको भगवान, हाँ तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सब कुछ हो, हाँ, सब। तो ये कौन सी कैटेगरी का है, ओवरली मैग्निफाइड सेल्फ अवर्थ, इसका जरासंध और पौंड्रक में ये डिफरेंस। और इसने लेटर लिखा भगवान कृष्ण को, इसकी हिम्मत देखो कि भगवान कृष्ण को ये लेटर लिखता है कि जो तुमने सुदर्शन और मेरे अस्त्र शस्त्र चुरा के तुम बैठे हुए हो, वो त्यागो, उसको छोड़ो। तो भगवान श्री कृष्ण जब वो लेटर पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इतना कभी हंसे नहीं, भगवान जोर जोर से हंसने लगे। और कई आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के भक्त भगवान के सामने भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, प्रार्थनाएं वगैरह, तो भगवान मुस्कुराते हैं जब, इसलिए एक भगवान का नाम है स्मित कृष्ण। वो भगवान कृष्ण बहुत ही, स्मित का अर्थ है कि एक मंद मुस्कान होंठों पर, उसको कहते हैं स्मित। परंतु पौंड्रक के पत्र को भगवान जब पढ़ रहे थे तो भगवान जो, जिसको कहते हैं ना ठहाका मारकर हंसना, हंसने लगे भगवान। तो प्रश्न ये है कि एक तरफ यशोदा माई दामोदर अष्टकम में हम पढ़ते हैं कि भगवान को रुलाई, और यहां पौंड्रक भगवान को इतना हंसा रहा है, तो भक्त कौन है? तो हमारे अंदर ये जो मन है, हमारा ये जो मन, बदतमीज मन, ये क्या करता है? पहले तो जरासंध की तरह भगवान को परास्त करने की कोशिश करता है, और यदि भगवान परास्त न हो सके तो ये एक अलग ही प्रस्ताव रखता है कि तुम ही बन जाओ भगवान। इसलिए जो मायावाद है, हमें इतना ज्यादा ये खतरनाक नहीं लगता होगा कि, क्योंकि हम लोग कन्विंस्ड हैं कि भाई भक्त बन जाए वही बहुत है भगवान। तो जब कोई पूर्ण रूप से हताश हो जाता है, सारे प्रयास उसके विफल होते हैं, परंतु वो अपना अहंकार नहीं छोड़ता, वो मायावादी बनता है। अब देखो, जब कोई जैसे किसी भिखारी को आप देखो, जो कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, अपंग है, तो अपने आप उसके अंदर ये सब कारणों की वजह से थोड़ी नम्रता आ जाती है कि भाई और मैं कुछ नहीं कर सकता भीख मांगने के अलावा। परंतु जब किसी के अहंकार को कुछ नहीं होता, वो हारता नहीं, उसका अहंकार हारता नहीं, तो वो मायावादी बनता है। कि बाकी सारी चीजें भौतिक संसार में उसके अगेंस्ट में, उस कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसका शरीर, उसका मन, ये उसके रिश्तेदार इत्यादि, समाज वगैरह कुछ नहीं, परंतु उसका अहंकार उसको कह रहा है कि नहीं, ये सारे जो तुझसे संबंधित हैं, ये लोग सब फेलियर्स हैं, कारण हैं तेरे फेलियर्स के, लेकिन तू और तेरी पहचान किससे है? तेरे अहंकार से। और तू है क्या? तू वो भगवान। तो ये ओवरली मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ। अच्छा, अब हम देखेंगे केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी का कौन सा सेल्फ वर्थ था, कौन कहेगा? कौन से कैटेगरी का था वो? केशव कश्मीरी, उसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय का एक ऐसा विद्वान कि उस समय कोई नहीं था ऐसा विद्वान जो केशव कश्मीरी को हरा सके। जब चैतन्य महाप्रभु से केशव कश्मीरी मिला, उस समय चैतन्य महाप्रभु तो एक विद्यार्थी थे, न्याय के बच्चे थे, और केशव कश्मीरी तो वयस्क उम्र वाला और विद्वान। यहां पर आप चित्र में देख सकते हो, उम्र देखो चैतन्य महाप्रभु की, छोटे से, और गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु, इसने सुन रखा था कि ये चैतन्य महाप्रभु, ये निमाई पंडित है, ये बहुत बड़ा पंडित बना घूम रहा है यहां पर। तो इसका प्रोटोकॉल क्या था कि जहां पर भी जाए ये प्रूव कर दे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बस सब लोग वहां पर कहें कि भाई केशव कश्मीर से बड़ा विद्वान कोई नहीं, संस्कृत का ज्ञाता कोई नहीं। तो गंगा के ऊपर स्पॉन्टेनियस इसने संस्कृत के लगातार श्लोक पे श्लोक गंगा का गुणगान, और वो भी फ्रेश, कभी किसने गंगा का गुणगान इस प्रकार से नहीं किया, इसने खुद ने कभी ऐसे श्लोक कंपोज नहीं किए, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट श्लोक कंपोज कर बोलना, ग्लोरिफिकेशन, परफेक्ट मीटर में सब। कई बार हम लोग क्लासेस में श्लोक याद करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कहाँ, शीशे के सामने, नहाते समय, शेव करते समय, श्लोक बार 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 बार, फिर भी भूल जाते हैं, और वो भी ऑलरेडी कितने हजारों साल पुराने श्लोक जो रचे गए हैं, कितने बार सुने हैं। यहां पर केशव कश्मीरी इस प्रकार का विद्वान। अब चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी ने जो करीब 50 से भी ज्यादा श्लोक कंपोज कर गंगा जी के गुणगान में कह दिए, उसमें से निमाई पंडित ने श्लोक का नंबर पकड़ा, वो श्लोक का सेंटेंस कौन सा था, कौन से सेंटेंस में, कौन से वर्ड में गलती की, वो पकड़ लिया, भवानी भरतुर पकड़ लिया चैतन्य। तो ये केशव कश्मीरी अब हक्का बक्का रह गया, कि एक तो इस बालक ने याद रखा, सारे श्लोक इसको याद हो गए, मतलब मैं बोल रहा हूं, सोचो कि कोई अगर वक्ता श्लोक बोल रहा है और ऑडियंस वहीं पे उसको याद कर ले, कई बार तो पूरा लेक्चर सुन लेते हैं हम लोग, नोट्स भी लिख लेते हैं और फिर घर पर कोई जाकर बताए कि बहुत आज ऐसा लेक्चर सुना पावरफुल, क्या सुना है, नहीं नहीं पावरफुल लेक्चर था, नोट्स भी लिखा है मैंने, तो क्या सुना है क्या, अरे तो नोट्स में लिखा है ना वो, तो इसलिए तो नोट्स लिखता है क्योंकि याद नहीं रहता हमको कुछ। सोचो यहाँ पे डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ याद और उसमें से पॉइंट आउट किया, तो केशव कश्मीरी, तो केशव कश्मीरी का जो ये मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ, इसका भी मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ था केशव कश्मीरी, परंतु जब निमाय पंडित, और निमाय पंडित के जो पार्षद वो तो जानते थे कि केशव कश्मीरी हारने वाला है, और वो लोग इस ताक में थे कि केशव कश्मीरी को निमाय पंडित पब्लिकली हराए, कोई है अभी टक्कर का जो हराएगा केशव कश्मीरी, क्योंकि केशव कश्मीरी बहुत घमंड में घूमता फिरता था। तो निमाय पंडित उन्होंने केशव कश्मीरी के साथ कैसे डील किया, एकांत में, पब्लिकली डिफीट नहीं किया केशव कश्मीरी को। और जब निमाय पंडित के पार्षद केशव कश्मीरी के हार पर हंसने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोका नहीं। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, मैग्निफाइड येट मोल्डेबल, पौंड्रक को भगवान मारना पड़ा, भगवान को मारना पड़ा पौंड्रक को, जरासंध को भी मारना पड़ा, मोल्डेबल नहीं थे वो लोग, अकड़ू थे। परंतु केशव कश्मीरी हालांकि मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ था इसका, परंतु मोल्डेबल था कि उसे बदला जा सके। इसलिए केशव कश्मीरी से हम क्या सीखते हैं कि हाँ, यदि हम किसी फील्ड में बहुत माहिर हैं तो कई बार हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमको बहुत सिविलाइज्ड तरीके से समझाएंगे, बेटा नजर नीचे, बी ग्राउंडेड। तो इसलिए मेरे को ये बहुत ही इंप्रेसिव लगा कि हाउ चैतन्य महाप्रभु डेल्ट विथ केशव कश्मीरी इन अ वेरी सिविलाइज्ड वे, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु न्यू दैट केशव कश्मीरी आई शुड नॉट ब्रेक हिम, इफ आई पब्लिकली डिफीट हिम ही विल नेवर कम बैक, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म हिम, आई डोंट वॉन्ट टू किल हिम, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म हिम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का उद्देश्य क्या है, नॉट किलिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए ये वो वाली कैटेगरी है मैग्निफाइड सेल्फ वर्थ। अर्जुन का जो सेल्फ वर्थ, सप्रेस्ड सेल्फ वर्थ, जिसमें आप देखते हो कि अर्जुन के अंदर वो क्षमता थी कि वो अकेले, और उन्होंने कर दिखाया था पूरी कुरु सेना को अकेले हराया अर्जुन ने, परंतु अब भगवत गीता की शुरुआत में प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने सेल्फ वर्थ को सप्रेस कर रहे हैं। कई बार भक्ति में हम इस अर्जुन के मोड में, अर्जुन फर्स्ट चैप्टर के मोड में जाते हैं, अर्जुन इन फर्स्ट चैप्टर मोड, और वो क्या है कि हमारे अंदर बहुत सी खूबियां भगवान ने दे रखी है हमको, हम उसको आर्टिफिशियली सप्रेस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कि नहीं मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं। इसलिए भगवत गीता के द्वारा भगवान ने केवल अर्जुन का जो सप्रेस्ड सेल्फ वर्थ था उसके ऊपर जो अर्जुन जबरदस्ती, जैसे होता है ना कि कोई अटैच ही आप पैक कर रहे हो और बहुत सारे सामान उसके अंदर डाले जा रहे हो, उसको अंदर ठूंसते जा रहे हो, तो भगवान ने वो ढक्कन हटा दिया और फिर जो अर्जुन के अंदर का सेल्फ वर्थ, एक्चुअल सेल्फ वर्थ, वो ऐसे बाहर आया कि अर्जुन ने कभी ऐसा युद्ध लड़ा नहीं, न भूतो न भविष्यति, क्योंकि वो जो युद्ध अर्जुन ने लड़ा, निर्णायक युद्ध उनके जीवन का, महाभारत का, वो युद्ध भगवत गीता, शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ उनका समन्वय था, शस्त्र और शास्त्र का समन्वय था उस युद्ध में अर्जुन के उदाहरण से। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के मिशन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब के अंदर, हम सब मनुष्यों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हैं। कैसे है? हम सब मनुष्यों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां कैसे हैं? हमारे अंदर शक्ति है क्रिएशन। कुछ बताओ आप लोग यहां पर क्रिएशन के संदर्भ में कि आपने खुद के बलबूते पर कुछ क्रिएट किया। छोटी सी चीज हो सकता है कि कोई क्राफ्ट, पेपर से आपने बोट बनाया, एज सिंपल एज दैट, या किसी शिशु को जन्म दिया, बहुत बड़ा क्रिएशन हो गया ना वो तो, एक्चुअली वो तो पेपर की बोट तो क्या है, तो एक रेप्लिका है बोट का, एक्चुअल बोट नहीं हो। तो कुछ ऐसा क्रिएशन आप बताइए कि जिसके वजह से आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये नहीं कहूंगा कि खुद के ऊपर घमंड, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज जो मैंने क्रिएट करी ये मैं फिर से कर सकता हूं या इससे अच्छा भी कुछ कर सकता हूं। कुछ है? हाँ ड्रेसिंग, हाँ बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखो जैसे हमारे यहां पर प्रयोजन गुरु प्रभु ने ये सुंदर मोर, अच्छा लगा आप लोगों को मोर, प्लेन यहां पर मार्बल था ये, है ना, और उन्होंने, उनको मैंने एक चित्र दिया कि ये इस प्रकार का मोर चाहिए मुझे, चित्र दिया। तो मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने खाली एक चित्र, वो भी गूगल से, जिसे किसी ने बनाया होगा गूगल से मैंने लिया और उनको प्रिंट आउट निकाल कर दिया। उन्होंने देखो अपनी कलाकारी से पेंट ब्रश, मुझे कोई पेंट ब्रश दे था हाँ, तो यहां पे मोर क्या हो, लांडोर निकालता मैं वो भी नहीं, पता नहीं क्या कौवा निकल जाता मुझे। तो देखो उनके अंदर ये एक इतने सुंदर चीज के निर्माण करने की कला, जैसे कि जो श्रृंगार करते हैं भगवान का, उनके अंदर होता है, ये कला होती है उनके अंदर कि वही कपड़े वही वस्त्र सब जैसे महत्वत्व की तरह पड़े रहते हैं पीछे जैसे महत्वत्व में सारे 24 तत्व होते हैं ना, लेकिन हमारे पुजारी पीछे जाकर उन महत्वत्व में से अलग अलग तत्व निकालते हैं और उन तत्वों को फिर भगवान के ऊपर उनके कलाकारी से उस भगवान को सजाते हैं वो लोग। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखिए कि जो पुजारी, यहां पर कई पुजारी हैं जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, कौन कौन करते हैं भगवान का श्रृंगार? यहां पर माताएं गार्लैंड्स बना रहे हैं, हाँ, भगवान के संदर्भ में जो भी कुछ डीटीज के संदर्भ में। कभी हमने कल्पना की थी कि हम इस प्रकार का श्रृंगार खुद को छोड़ के किसी और को कर पाएंगे या खुद पे भी कर पाएंगे? हाँ, इस प्रकार का श्रृंगार, जैसे कि कोई कुक होता है, कुक वो क्या करता है, इंग्रेडिएंट्स, वही इंग्रेडिएंट्स हमको दे दें। एक जो माहिर कुक होता है वो कम से कम इंग्रेडिएंट्स में मैक्सिमम फीस, जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद उन्होंने चैलेंज किया, वृंदावन में एक प्रभुपाद जी के मित्र हुआ करते थे भगत जी, तो भगत जी को प्रभुपाद ने चैलेंज किया कि मैं एक घंटे में मैं 50 लोगों के लिए 12 कोर्स फीस्ट बना सकता हूं। और वो भी ऐसे नहीं कि जैसे एक बार हम लोग ने राधाष्टमी के समय 1008 आइटम्स राधा रानी को ऑफर करना है, तो कैसे हमने 1008 नंबर लाया? पोहा विद कोथमीर, पोहा विदाउट कोथमीर, पोहा विद काजू, पोहा विद छिंगदाना, ऐसे। तो प्रभुपाद ने कोई 12 कोर्स फीस्ट उस प्रकार से नहीं बनाई। तो भगत जी प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस देखकर वो बोले कि नहीं, मैं शर्त नहीं रखूंगा भाई, आप तो अगर आप पाश्चात्य देश में जाकर हिप्पियों को वैष्णव बना सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो एक कुक देखो निर्माण कर सकता है, वो वही इंग्रेडिएंट्स अग्नि सबका समन्वय और एक जोरदार फीस्ट बना सकता है। और कुछ कोई ऐसे एग्जांपल्स, क्रिएशन के एग्जांपल्स? क्या इन्वेंट किया आपने? नहीं आपने, मैं यहां पे, ऐसे तो बहुत हैं उदाहरण, बाकियों के तो हम बहुत देख सकते हैं, आप लोगों का उदाहरण खुद का। वैसे तो सुबह सुबह हम लोग बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, बदबू, वो तो बहुत कुछ है, वो भी इन्वेंट करते हैं ना। तो जैसे ब्रह्मा, शिव और विष्णु, हमारे अंदर क्रिएशन, मेंटेनेंस और संहार की शक्ति है हमारे अंदर। जैसे यहां पर ये पूरा मंदिर जो निर्माण हुआ है, प्रभुपाद ने हमको एक ब्लूप्रिंट दिया कि ऐसे ऐसे प्रचार करना है, ऐसे मंदिर बांधना है, ऐसे मैनेज करना है, ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रीचिंग, कैसे प्रीचिंग से आप देखो, यहां पर जो कमिटेड डिवोटीज बैठे हुए हैं, कि हम लोग सब प्रभुपाद के फिलॉसफी के संपर्क में आए, और वो जो इनिशियल लिंक था वो बहुत ही नाजुक लिंक था, बस आए ऐसे ही मंदिर में दर्शन के लिए, या किसी ने बोल दिया आ जाओ, आ गए। कभी हमें कोई अंदाजा नहीं था कि यहां पर आते 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 इतना सब कुछ सुनते सुनते किसी ने हमारे ऊपर बंदूक की नोक पर नहीं कहा, या कोई ऐसी शर्तें नहीं रखी हैं कि तुम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे हमारे अंदर के वैष्णव का निर्माण किया गया। ये हमारे अंदर का जो ये जो वैष्णव है, अभी जो हम लोग वैष्णव, ये कहां से आया है? हमारे अंदर से आया है, अंदर ही था, ये कहीं तो था, हमें भी पता नहीं। प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद के प्रतिनिधि, उन्होंने हमारे अंदर के वैष्णव को टटोल कर, खोज कर, साफ कर कर बाहर नहीं। वही प्रभुपाद ने देखा हिप्पियों के अंदर, प्रभुपाद जो देख रहे थे बैठे हुए सारे हिप्पियों को, कोई दूसरा कैसे देखता, अरे ये तो सबसे गए गुजरे स्पीशीज हैं मनुष्यों में, हर प्रकार का नशा, हर प्रकार का इंद्रिय भोग, तमो गुण में ये गिरे हुए। प्रभुपाद ने क्या देखा? नहीं नहीं नहीं, अनपॉलिश डायमंड है ये लोग। सोचो प्रभुपाद कैसे देखते थे, अनपॉलिश डायमंड। तो ये प्रभुपाद का विजन क्रिएट किया वैष्णव को उनके अंदर से, ये कह सकते मेंटेन किया। हमारे अंदर ये सब शक्ति है, हमारे भक्ति को हम क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और हमारे अंदर ही शक्ति है उसको खत्म करने की भी। तो बहुत पोटेंशियल है हमारे अंदर, जैसे अर्जुन के अंदर, लेकिन सप्रेस्ड है, उसको हमको बाहर निकालना। इसलिए बार 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 हम लोग ये सब अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, वैरायटी, ये सब प्रोग्राम्स, साधना भक्ति के अंग अलग अलग क्यों है, ये सब वही ढक्कन को निकालना है, साइड में करना है। होता क्या है कि मंदिर में आते हैं पूरा ढक्कन निकल जाता है बाहर, हाँ बस मेरे अंदर का सेल्फ वर्थ बाहर आ गया। फिर जैसे बाहर जाते हैं बहुत मिलते हैं ढक्कन वापस लगाने के लिए, एकदम टाइट बंद करके कॉर्क वॉर्क लगा के अगले संडे बुधवार तक पूरे अंदर ढक्कन सील पैक बंद हुए। फिर वही ढक्कन लगा हुआ मंदिर में आते हैं, फिर उसे ढक्कन खोल जाता है, होता है ना। कई बार बीच की स्थिति में होते हैं, थोड़ा सा खुला हुआ है ढक्कन, पूरा भी बंद नहीं है, पूरा भी खुला नहीं है, उसमें से बीच बीच में से दिखता रहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा हमारा सेल्फ वर्थ इतना सा बाहर आता है, कोई अंदर दबा रहा है, थोड़ा दबा रहा है, कोई बाहर आ रहा है। यह है स्ट्रगलिंग डिवोटी, जो ढक्कन ढीला है, ढीला ढक्कन मतलब स्ट्रगलिंग डिवोटी। तो भगवत गीता सुनने के पश्चात पूरा जो सेल्फ वर्थ, सप्रेस्ड सेल्फ वर्थ अर्जुन का बाहर है। ध्रुव महाराज कौन सी कैटेगरी का सेल्फ वर्थ है? ध्रुव महाराज का जो हमने 6 कैटेगरीज ली, फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ वर्थ, कि ध्रुव महाराज के साथ जो ज्यादती हुई और ध्रुव महाराज फ्रस्ट्रेट हुए, तो फ्रस्ट्रेशन में ध्रुव महाराज कि मेरी औकात क्या है। सुरुचि ने ध्रुव महाराज को कह दिया तेरी औकात क्या है, तू गोद में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। तो ध्रुव महाराज अपनी औकात दिखाने के लिए कि मैं बताता हूं मेरी औकात, मेरा वर्थ क्या है, तब तक ध्रुव महाराज, मान लो कि यही स्टोरी में उत्तानपाद जिनके गोद में ध्रुव महाराज बैठे, सुरुचि अगर ध्रुव महाराज को कहती कि बहुत अच्छा लग रहा है, चल एक फोटो खींचती हूँ तेरे तेरे पिताजी के साथ, क्या होता? ध्रुव महाराज अच्छा एक फ्रेम में फोटो होती, गोद में बैठे हुए, अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए, अच्छी फोटो हो गया। परंतु उनका वर्थ क्या? वर्थ 6 महीने में भगवान का दर्शन, और उन 6 महीने में पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचाने वाले ध्रुव महाराज, घुटन होने लगी थी सबको ध्रुव महाराज की तपस्या से। तो वर्थ बाहर कैसे आया? फ्रस्ट्रेशन। तो कई बार हम लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, कुछ सूझता नहीं, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, बॉस भी परेशान कर रहा है, परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, समाज परेशान कर रहा है, मन परेशान कर रहा है, इंद्रिय परेशान कर, सब कुछ हर प्रकार से फ्रस्ट्रेशन, उस फ्रस्ट्रेशन में एक में वो उपाय क्या रहता है फिर? भगवान का शेल्टर। तो हम लोग देखते हैं कि कई मैक्सिमम इस्कॉन के अंदर हमारी कौन सी कैटेगरी? फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ वर्थ की कैटेगरी है मैक्सिमम। एक है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जैसे गीता में भगवान ने कहा है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। हमारी कैटेगरी है ब्रह्मभूत, ब्रह्म नहीं भ्रम, भ्रमित भूत, परेशान आत्मा, ब्रह्मभूत परेशान आत्मा, सदा शोचति सदा कांक्षति। तो इसलिए कई बार ये जो फ्रस्ट्रेशन है, हाल ही में एक डिवोटी मेरे पास आए, फ्रस्ट्रेटेड थे तो व्यक्त कर रहे थे अपना फ्रस्ट्रेशन। तो मैंने उनसे कहा कि, और बोल रहे थे कि मुझे प्रभु जी मैं अभी बार बार, और वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, इतना परेशान कंपनी के अंदर परेशानी, मेरे जो भाई हैं वो मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं, ये वो सब परेशानी की लेस, मैं प्रभु जी परेशान होकर मंदिर आ जाता हूं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं उनको एक उदाहरण दे रहा था कि मान लो कि कोई समंदर में तैर रहा है और एकदम मधुर लहरें हैं समंदर के अंदर, काम सी शांत समंदर है, तो वहां से उसको बाहर निकलने का वो मन ही नहीं करेगा, एकदम फ्लोट कर रहा है अच्छी से। कोई अगर रस्सी भी फेंके बाहर निकलने के लिए तो वो रस्सी को भी वो कितना कष्टा पकड़ेगा, परंतु उसी समंदर में हाई टाइड्स आ जाए, सुनामी आ जाए, फिर वो रस्सी को कैसे पकड़ेगा देखो, क्योंकि यही एक में वह सहारा है। तो ध्रुव महाराज की तरह जब हमारा सेल्फ वर्थ पूरा फ्रस्ट्रेट हम हो जाते हैं, तो जैसे ये डिवोटी मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी मैं इतना परेशान हो के मैं कहीं जाने का मन नहीं करता है, ना घर जाने का मन करता है, ना मेरे दोस्तों के साथ बात करने का मन करता है, तो एक ही मैं करता हूं, गाड़ी में मोड़ता हूं, मंदिर आ जाता हूं। मैंने कहा अगर वो सब नहीं हुए होते तो आप गाड़ी कहां मोड़ते, है ना, किनारा, किनारे पे है ना वो रेस्टोरेंट, नाम भी वही है। तो कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो वहां से टर्न लेके किनारे से आगे आके भगवान है हमको ठिकाने लगा रहे हैं किनारे से उठा के, नहीं तो कोई सीधा उसके अंदर ही जाता ना मौज मस्ती करने की। तो इसलिए जो फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ वर्थ का एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज का, कि जिसके वजह से ध्रुव महाराज को पता चला, हम सबको पता चला कि उनके अंदर का मूल्य क्या था, थैंक्स टू सुरुचि जिन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिलाया ध्रुव महाराज को, और जिसके वजह से उनका जो वर्थ है वो सारी दुनिया में, यहां तक कि रिकॉर्डेड इन द पेजेस ऑफ भागवतम, चैतन्य महाप्रभु बारंबार सुना करते थे अगेन एंड अगेन ध्रुव महाराज की कथा, और सुना, एक बार हो गया सुन के, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और वो भी तुरंत, ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना ध्रुव महाराज की कथा लंबा चौड़ा हमने सुन लिया, जैसे भी मैंने आपको एक 10-15 मिनट ध्रुव महाराज की कथा संक्षिप्त रूप में सुना दी। अब आप लोग ताक में कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ अभी, अब मैं वापस शुरू कर दूं तो ध्रुव महाराज के बारे में हम फिर से बताना चाहेंगे। ध्रुव महाराज एक बार अपने पिताजी की गोद में, प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु बार बार ये ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल कि पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो जो कि राधा भाव में आए हुए, वो ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज की कथा बारंबार सुनना चाहते थे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है सनातन गोस्वामी जो एक समय आत्महत्या करना चाहते थे। रथ यात्रा में आकर, और उनको ये लग रहा था कि मेरे शरीर में एक दफा ऐसा हो गया था कि उनके शरीर से बहुत पस निकलकर बहुत उनको बीमारी सी हो गई थी, तो उनको लग रहा था कि ये चैतन्य महाप्रभु बार बार मुझे आलिंगन करते हैं, मेरे शरीर का जो पस है उनके शरीर पर लगता है, मेरी बीमारी और मैं उनको रोक नहीं पाता, तो मैं अपना शरीर खत्म कर दूं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। अब सनातन गोस्वामी ने किसे कहा नहीं था, उन्होंने केवल मन में यह संकल्प लिया था कि अब आने वाली जो रथ यात्रा है, रथ के पहिए के नीचे मैं अपने शरीर को रख दूंगा, जगन्नाथ के रथ के पहिए के नीचे। किसी को कहा नहीं उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जान गए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन तुम्हें शर्म नहीं आती, सबसे पहले तुमने ये कैसे समझ लिया कि ये शरीर तुम्हारा है। बहुत सुंदर तरीके से उनको हराया चैतन्य महाप्रभु ने, कैसे समझ लिया कि ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर मेरा है और तुम मेरे प्रॉपर्टी को मेरे पूछे बिना खत्म कर रहे हो। सेल्फिश सेल्फ वर्थ। देखो सनातन गोस्वामी द्वारा ये उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सामने रखा। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन में हम केवल अपने विषय में कि हाँ मैं मेरा, हाँ उसके नोबल थॉट्स भी होंगे परंतु अगर वो स्वार्थी हैं तो किसी काम के नहीं। और फिर नारद मुनि ने प्राचीनी बरहिषत जो कि मिस्टेकन सेल्फ वर्थ का एग्जाम्पल है प्राचीनी बरहिषत। तो ये राजा इतने यज्ञ किया करता था परंतु इसे कोई ध्यान नहीं था कि ये यज्ञ का परिणाम क्या होना चाहिए, किस लिए उद्देश्य क्या होना चाहिए। और नारद मुनि इसके मिस्टेकन सेल्फ वर्थ को उजागर करने के लिए पुरंजन की कथा सुनाए। तो ये एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो हम हमारे अगले सेटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेंगे जो हम इस बार चर्चा नहीं करेंगे, आज हम हमारे चर्चा को यहीं विराम देंगे, और वो हैं हनुमान जी का उदाहरण कि हनुमान जी के आत्ममूल्य को हनुमान जी ने कैसे पहचाना। और हनुमान जी हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि हम हमारे सेल्फ वर्थ को कैसे पहचाने और हनुमान जी की तरह राम और सीता को मिलाएं। हमारी भक्ति है खोई हुई या किडनैप्ड सीता, हमारी भक्ति क्या है, किडनैप्ड सीता है, अकेले हैं रामचंद्र जी बेचारे, और हमें हनुमान जी के पदचिन्हों पर चलते हुए राम और सीता को मिलाना है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न, एक प्रश्न हम ले सकते हैं अगर है तो।
एक्चुअली सेल्फिश हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो तो एक्चुअली
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज किए, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। क्योंकि ये जो विचार है आत्महत्या का विचार, ये बहुत ही स्वार्थी विचार है। क्योंकि ये शरीर केवल हमारे लिए नहीं भगवान ने दिया है, ये शरीर से हमें बहुतों का मतलब सहायता करनी है, यानी कि उद्धार करना है, बहुतों की सहायता करनी, इसके लिए शरीर दिया। तो इस शरीर को कोई खत्म भी कर रहा है वो भी स्वार्थ का लक्षण है। बहुत, उसके अंदर बहुत गहरी चीजें छिपी हुई हैं, उस अलग कैटेगरी का स्वार्थ है, बट इट इज सेल्फिश, है कि नहीं? कभी आप देखो कोई परिवार में कोई आत्महत्या कर लेता है, सोचता भी नहीं कि उसके पीछे कितने लोग परेशान होंगे अभी, हाँ? जिसने कृत्रिम रूप से अपने आप को खत्म कर दिया, कितने लोग जो उसके ऊपर डिपेंडेंट, उनका क्या होगा, बिना सोचे समझे कि भाई मुझे परेशानी सहन नहीं हो रही है, इसलिए मुझे इस परेशानी से मुक्त होने का एक ही उपाय सूझ रहा है, आत्महत्या। स्वार्थी है ना। कोई अनाउंसमेंट है तो बस आप लोग फिर से नोट डाउन कर लो, 27 तारीख का कार्यक्रम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का। हम लोग सब, आप लोग देख रहे होंगे, सब लगे हुए हैं, हाँ? स्वागत उनका करने की उनकी तैयारी में, तो आप लोग भी योगदान दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। हमारे यहाँ पर कुंभ मेला, महाराज आ रहे हैं, ये जो शाही स्नान है उसमें बहुत सी हमें मदद चाहिए अलग अलग प्रकार की। तो नरसिंह कृपा प्रभु, सहस्त्र शिष्य प्रभु, गोपालानंद प्रभु, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, व्हीकल्स हैं, या कोई एम्प्टी फ्लैट है, अलग अलग प्रकार से बहुत से गेस्ट आने वाले हैं, तो हमको मदद की जरूरत है। हरि बोल। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।